Om Shanti. Om Shanti means is greeting of peace. So सभी प्यार से कहेंगे Om Shanti. Om Shanti. Good morning. पिछले तीन दिनों से हम सभी लगभग अलग अलग सेशन में वैरायटी ज्ञान रत्नों को कलेक्ट कर रहे हैं. ये ज्ञान रत्नों को जब हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो हमारा जीवन सुंदर, खुशनुमा, सहज, सरल और सफल बन जाता है. जीवन को सफल बनाने में समय का भी बहुत बड़ा योगदान है. समय के लिए कई सारी बातें कही जाती है. कहते हैं समय बड़ा बलवान है. कोई भी बात होती है तो कहते हैं समय पर छोड़ दो, अब समय ही इसे ठीक करेगा. कहते हैं हर दर्द की दवा समय है. समय के लिए कहते हैं टाइम इज मनी, टाइम इज वैल्यूएबल. साथ ही में कहते हैं टाइम हमेशा चेंज होता रहता है. टाइम इज अ वेरी गुड टीचर. परिवर्तन संसार का नियम है. तो अगर हम समय को सही रिस्पॉन्स देते हैं तो आने वाला समय हमारे लिए अच्छा बन जाता है. तो समय को रिस्पॉन्स देने के लिए समय के महत्व को जानना और समय का चक्र कैसे फिरता है उसको जानना बहुत जरूरी है. तो इसी समय के महत्व को और समय किस रीति से चलता है उसके ऊपर मार्गदर्शन करने आज हमारे बीच में वरिष्ठ राजयोगा टीचर राधा दीजी जी पधारे हैं. हम सभी जोरदार तालियों से आपका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं. आपके वाणी में है मधुरता, नैनों में है रूहानियतता, आपके मस्तक पर है दिव्यता. आप ऐसे चैतन्य दीपक जागती ज्योत हो जिसने विश्व की कई आत्माओं को ज्ञान की रोशनी दे उनके जीवन को रोशन किया है. तो आपके लिए मैं यही कहूंगी. आपका परिचय देते हुए, शी स्टडीड एमए एंड एमफिल इन मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स. शी इज टॉपर ऑफ यूनिवर्सिटी. शी वॉज सिलेक्टेड फॉर IIS, बट शी चूज टू डेडिकेट हर लाइफ टू सर्व द ह्यूमैनिटी. आप पिछले 57 वर्षों से राजयोगा मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं. पिछले 40 वर्ष ब्रह्म कुमारीज गोरेगांव मुंबई सेवा केंद्र का सुचारू रूप से आप संचालन कर रहे हैं. एट प्रेजेंट शांतिवन इंटरनेशनल हेडक्वार्टर ऑफ ब्रह्म कुमारीज में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं. विदेशों में भी जैसे कि रशिया, सिंगापुर, मलेशिया, नेपाल, दुबई एंड अदर इमिरेट्स ऑफ यूएई में भी आपने आपके व्यक्तित्व से ज्ञान का प्रकाश फैलाया है. आपको शुरू से ही म्यूजिक और सिंगिंग में भी रुचि रही है. आपने कई आध्यात्मिक और देशभक्ति के गीत भी रिकॉर्ड किए हैं. साथ ही में कई सारे कॉर्पोरेट्स में आपने अलग अलग टॉपिक्स पे जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और हैप्पीनेस इंडेक्स, इसके ऊपर भी अपने सेशंस दिए हैं. शी इज ऑल्सो वेरी गुड काउंसलर. साथ ही में आपने ब्रह्मा कुमारीज के राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत यूथ विंग और एडमिनिस्ट्रेशन विंग में भी अपनी सेवाएं प्रदान की है तथा सोशल सर्विस विंग के आप कमिटी मेंबर भी है. और आज बहुत सुंदर विषय लेकर हमारे बीच में आए हैं. तो हम सुनेंगे आदरणीय राधा दीदी जी से.
ओम शांति. ओम शांति. सभी बोलिए ओम शांति. गुड मॉर्निंग. जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। गीत की लाइन सुन रहे थे हम सभी। कि जिंदगी एक खेल है और जब खेल होता है तो वो इंजॉयमेंट के लिए होता है। जो खेलता है वह भी इंजॉय करता है और जो देखता है वह भी इंजॉय करता है। इसलिए जब खेल खेले जाते हैं ना तो उनकी अनाउंसमेंट्स हो जाती हैं पहले से ही, उनकी टिकट्स होती हैं स्टेडियम में। जब वो खेल खेले जाते हैं तो लोग उनको देखने के लिए विशेष जाते हैं। ये जरूरी है कि जब भी कोई खेल खेला जाता है तो किसी की हार है उसमें और किसी की जीत होती है। हार होती है अगर वो व्यक्ति नाराज हो जाता है तो कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। भाई जीत हुई तो खुश हो गए और हार हुई तो उदासी आ गई, नाराजगी आ गई या किसी को ब्लेम कर दिया, तो कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। हार और जीत तो चलती रहती है, ये तो होती ही है। ऐसे जिंदगी में भी हार और जीत चलती रहती है क्योंकि खेल है। हम ये खेल खेलने के लिए ही इस दुनिया में आए हैं। लेकिन ये भी निश्चित है कि सदा किसी की जीत नहीं होती और सदा किसी की हार नहीं होती। कभी हार है तो कभी जीत है। इसलिए कहा है गीत के लिरिक्स में कि मुस्कुराना सीख लीजिए। जब खेल खेलते हैं हार हो भी गई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई तो जीता, उसकी जीत में मुझे खुशी है। कल ही कोई सुना रहा था, वो स्पोर्ट्समैन है वो व्यक्ति जो सुना रहा था, तो कहता है जब भी मैं बच्चा था 12 साल से टीम्स में खेलना शुरू किया और जब मैं बच्चा था और खेल कर आता था, टेनिस का प्लेयर है, तो घर आता था तो माँ पूछती थी बेटा क्या हुआ जीता, क्योंकि माँ की एक्सपेक्टेशन तो यही होती थी कि जीते, तो माँ बड़ी खुश होती थी क्योंकि वो जीत के ही आता था। He was an expert player, बचपन से ही वो अपनी बात सुना रहा था। तो जब माँ खुश होती थी तो मैं भी बड़ा खुश होता था कि मैं जीता तो मेरी मम्मी खुश हुई। लेकिन फिर नेक्स्ट मोमेंट यह ख्याल आता था कि मेरे साथ जो खेल रहा था वो तो हार गया, उसकी मम्मी ने भी तो पूछा होगा कि तुम जीते या हारे, तो वो तो यही कहेगा मैं हार गया, और उसकी मम्मी तो फिर उदास हो जाएगी। जब वो अपनी माँ को कहेगा मैं हार गया तो उसकी मम्मी तो उदास हो जाएगी। तो वो भाई सुना रहा था, ही वॉज अ यंग फेलो, वो सुना रहा था कि तो उसी मोमेंट नेक्स्ट मोमेंट मुझे मन में आता था मैं क्यों जीता, इससे तो मैं हार जाता, उसकी मम्मी तो खुश होती। हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व होता है, अपनी विचारधारा होती है। वो किसी को दुखी नहीं देखना चाहता था, इमोशनल व्यक्ति है, तो उसने ये भी ख्याल आ जाता था। तो जिंदगी है, कभी जीत होती है कभी हार होती है। जीत में उदासी ना आए, जीत में बहुत ज्यादा अभिमान ना आ जाए और हार में उदासी ना आए। जीते तो भी ठीक है, हारे तो भी ठीक है। क्योंकि खेल है, खेल में चलता है। बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं तो अक्सर हर क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमेशा गुड लिस्ट में होते हैं, अच्छे मार्क्स लेने वाले बच्चों में होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन में आने वाले होते हैं। सबको लगभग पता होता है यही दो चार हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, लेकिन वो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार फर्स्ट वाला ही फर्स्ट आए, कभी थर्ड वाला भी फर्स्ट आ जाता है। पर स्टिल दे एंजॉय। इसलिए जीवन है, जीवन में अगर कुछ होता है, कोई चैलेंजेस आते हैं, कोई बातें आती हैं, कोई परिस्थितियां आती हैं, कहां थोड़ा हारने की गुंजाइश रहती है, तो हम हिम्मत करके उन चैलेंजेस को स्वीकार करके अपने को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं और चलते 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 ना अपने मकसद में आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जीवन में हम यहां आए हैं, इस दुनिया में आए हैं, किस लिए आए हैं, हमें किसने भेजा यहां, हम क्यों आए, हमें भेजने वाला तो भगवान ही है ना। कहते हैं भगवान ने भेजा हमको, पर किस लिए भेजा? सबसे पहली बात तो हम सब इस जीवन में हम सब एक्टर्स हैं, हम एक्टिंग करने के लिए आए हैं, अपना रोल प्ले करने के लिए आए हैं। तो जब हम रोल प्ले करते हैं, एवरी एक्टर फील्स आई शुड प्ले द बेस्ट, मुझे बेस्ट रोल प्ले करना चाहिए। तो जब हम इस जीवन में कोई भी रोल प्ले करते हैं और मुझे बेस्ट प्ले करना है, तो बेस्ट प्ले करने के लिए मुझे क्या करना है? आपने इस आध्यात्मिक ज्ञान का, बाकी तो आपके सैट विंग के अलग अलग विषय टेक्निकल टॉपिक्स चल रहे हैं, पर ये प्रातःकालीन सत्र जो होता है ये आध्यात्मिक विषयों को लेकर आता है। तो हमने पहले ही लेसन में ये लर्न किया है कि मैं एक ऐसी चैतन्य सूक्ष्म अति सूक्ष्म शक्ति हूं जिसके सात रंग हैं, सात गुण हैं, और अगर वो सात गुण मेरे व्यवहार में आते हैं, मेरे रोल में आते हैं, मैं जो रोल प्ले कर रहा हूं या कर रही हूं, या जो मैं एक्ट कर रहा हूं उस एक्ट में आते हैं, दैट मीन्स यू आर प्लेइंग योर रोल द बेस्ट। क्योंकि मैं कौन हूं जो सात गुण बताए गए हमको पहले ही लेसन में, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, ज्ञान, पवित्रता और शक्ति, इन सात गुणों को लिए हुए, इनको इमर्ज किए हुए जो रोल हम प्ले करते हैं, दैट रोल बी द बेस्ट। वो जो प्ले किया जाएगा, उन गुणों को लेकर के जो रोल प्ले किया जाएगा वो बेस्ट रोल होगा, उससे बढ़कर कुछ है नहीं। इसलिए ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये बिहेवियरल एक्सीलेंस है, व्यवहार की कुशलता है, ये व्यवहार कुशल बनाता है। और आजकल का जो समय चल रहा है, शायद उसमें व्यवहार कुशलता की ही सबसे बड़ी कमी है, व्यवहार कुशलता की ही सबसे कमी है। और उसी के कारण आज का जो जीवन हम देख रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं, उससे हम खुश नहीं है, ठीक है, चला रहे हैं, चल रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं जीवन है, घसीट रहे हैं, कब पूरा होगा, भगवान कब ले जाएगा, कब आएगा, उसको पुकार भी रहे हैं। तो आज के इस सेशन का जो विषय है वो है वर्ल्ड ड्रामा साइकिल। हिंदी में आप उसको सृष्टि का एक चक्र कह लीजिए, वर्ल्ड ड्रामा साइकिल, जो एक ड्रामा की भांति जिसमें हम अपने अपने रोल प्ले कर रहे हैं, हम अपनी अपनी एक्टिंग कर रहे हैं, जो रोल मुझे मिला है मैं वही प्ले कर रही हूं और उसे बेस्ट बनाने की हमें कोशिश करनी है, तभी तो अवार्ड मिलेगा ना, मिलता है ना, जो बेस्ट एक्टिंग करते हैं उनको अवार्ड मिलता है ना, बेस्ट एक्टर अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिलते हैं ना अवार्ड्स। ये वर्ल्ड ड्रामा साइकिल जो है ये हमें समय का ज्ञान देता है। हमने स्वयं के बारे में जाना, परमात्मा के बारे में जाना, परमात्मा से हम कैसे मिलन बनाएं, वो राजयोग क्या है, वो विधि क्या है, उसका आधार क्या है, हमने उसके बारे में भी जाना। लेकिन जैसे इस राजयोग में आत्मा का महत्व है, परमात्मा का महत्व है, मिलन मनाने का, परमात्मा से संगम का महत्व है, इसी प्रकार राजयोग में कर्मों का भी महत्व है और कर्मों के साथ साथ समय का भी बहुत महत्व है, समय का भी बहुत महत्व। इसलिए समय की पहचान बहुत जरूरी है कि कौन सा समय चल रहा है, ये प्रेजेंट टाइम कौन सा समय चल रहा है। जैसे अपनी रेगुलर दिनचर्या में हमें पता होता है समय कौन सा चल रहा है, पता होता है ना, हमको ऑफिस पहुंचना है, ऑन टाइम पहुंचना है, हमने रिस्ट वॉच भी रखी हुई है, वॉल क्लॉक भी रखी हुई है, मोबाइल में तो क्लॉक है ही, उसमें भी हम चेक करते रहते हैं और थोड़ा ध्यान रहता है कि भाई अभी उठने का समय हो गया, आई शुड गेट रेडी नाउ, टेक ब्रेकफास्ट एंड लीव फॉर माई जॉब, समय का ध्यान रहता है। आप समय का ध्यान न रखें और अपनी जॉब में लेट हो जाएं और आप कहें कि क्या फर्क पड़ता है, नहीं चलता, रेड मार्क आ जाएगा, आपका रजिस्टर खराब हो जाएगा। इसलिए चाहे स्कूल में जाने वाला बच्चा हो, चाहे ऑफिस जाने वाला व्यक्ति हो, चाहे घर में भोजन बनाने वाला व्यक्ति हो, चाहे मेड्स को घर में आना है और काम में मदद करनी है, हर व्यक्ति एक समय का ध्यान रखता है। इवन जो बहनें या भाई मेड्स का भी काम करते हैं, अगर उनको किसी दिन 5-7 मिनट लेट भी हो जाता है ना, तो आते ही अपने ओनर को, अपने मालिक को कहते हैं कि आज थोड़ा दीदी थोड़ा लेट हो गया, सॉरी। जो समझदार है वो ऐसे ही चलता है और समय को वो वेस्ट गवाता है, वो देर सवेर, कुछ लोग आते ही लेट हैं, नेचर ही है लेट आने की, ये सिस्टम बना लिया है, कुछ ईगो, दूसरों को कुछ ना समझना, उनके टाइम की वैल्यू ना करना, उनके तो वैल्यू ना करना, अपने भी टाइम की वैल्यू ना करना। लेकिन जैसे मेरे से पहले गायत्री बहन कह रही थी कि समय बड़ा बलवान है, समय की बहुत इंपॉर्टेंस है, कहा यही जाता है, सिखाया यही जाता है कि समय का जीवन में जब महत्व है तो समय का ध्यान रखो। समय हो गया, अब सोने का समय है, जल्दी से खाना खा करके अपने सब काम निपटा करके अब बिस्तर तैयार करो, सोने का समय होने वाला है, उठने का समय होने वाला है। हर व्यक्ति इस चीज का ध्यान रखता है। तो इस वर्ल्ड साइकिल में कौन सा समय अभी चल रहा है उसका भी हमें पता जरूर होना चाहिए, ताकि उस अनुसार हम अपने कार्यों को कर सके। ये जो वर्ल्ड साइकिल है, ये एक साइकिल की तरह ही इसमें समय चक्र लगाता है। इस साइकिल में समय बताया गया है, और ये साइकिल ही हो सकता है, इट इज नॉट लीनियर। समय के लिए कहा गया है इट इज नॉट लीनियर। अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो हर लाइन के हर पॉइंट पर अगर हम उसको टाइम कहें कि टाइम स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट एंड एंडेड एट दिस पॉइंट, ऐसा हम नहीं कह सकते। समय कभी खत्म होता ही नहीं, समय सदा है, समय सदा है। ऐसा कोई समय नहीं था जब समय नहीं था। पहले भी था, आज भी है, फिर भी होगा। हाँ, उसमें चेंजेस आते हैं, चेंजेस आते हैं, और वो साइकिल ही प्रूव कर सकता है कि समय चेंज होता रहता है। अगर समय को लीनियर दिखा देंगे, एक लाइन से दिखाएंगे, तो लाइन के तो हर पॉइंट पर सेम एंगल होगा, हर पॉइंट पर 180 डिग्री का एंगल होगा, और साइकिल के हर पॉइंट पर एक डिफरेंट एंगल होगा। हर क्षण जब बीतता है और नया क्षण आता है, समय बदलता है, घड़ी का कांटा बदल जाता है, टाइम बदल जाता है, भले वो सेकंड ही बदला हो, भले वो सेकंड ही बदला हो। जब एथलीट्स दौड़ते हैं ना, तो वो टाइमर होता है, तब क्लॉक यूज नहीं की जाती, टाइमर यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें सेकंड और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी आता है। तब डिसाइड किया जाता है कि फलाने नंबर के एथलीट ने इतने सेकंड में अपनी इस दौड़ को पूरा किया, हु इज फर्स्ट एंड हु इज सेकंड। उस समय क्लॉक यूज नहीं की जाती, क्योंकि वो प्रति सेकंड, बल्कि सेकंड का फ्रैक्शन भी काउंट होता है, इतना इंपॉर्टेंट है टाइम। इसलिए सेकंड या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तो क्या, आजकल हम देखते हैं लोग तो कई मिनट, कई घंटे, कई दिन भी वेस्ट कर लेते हैं, परंतु परमात्मा कहते हैं बच्चे समय खजाना है, समय ये आपका ट्रेजरर है। आपकी जेब में भले थोड़े से ही पैसे पड़े हों, फिर भी पैसे तो पैसे ही है ना। भले ज्यादा कुछ रुपए नहीं है, 500,000 रुपए ही है, पर फिर भी 500,000 तो है ना, खजाना तो है ना। आपको उन रुपयों का ध्यान तो रहता है ना, भी मेरी जेब में है, उसको वॉशिंग में डालने से पहले निकाल लूं, गीले हो जाएंगे तो खराब हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज आई नो कि ये खजाना है, इससे कई कुछ लिया जा सकता है। सिमिलरली समय भी खजाना है। अगर उसको हम खजाने की तरह देखते हैं तो उतने थोड़े से समय में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। कोई एथलीट इसलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड में नहीं आया क्योंकि एक सेकंड की कमी रह गई थी, सिर्फ इसलिए। तो कितना महत्व है समय का। तो ये वर्ल्ड एक साइकिल के रूप में ये हमारे समय को दर्शा रहा है, जो चित्र आप यहां देख रहे हैं, एक साइकिल के रूप में है ये। वैसे भी जीवन में हर चीज साइकिल में है, दिन और रात का साइकिल, दिन आता है फिर रात आती है, फिर दिन आता है फिर रात आती है, इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। जीवन मृत्यु का साइकिल, मनुष्य जन्म लेता है फिर मृत्यु को भी पाता है। जितना जीवन निश्चित है उतनी ही मृत्यु भी निश्चित है। जो आया है उसे जाना है और फिर आना है और फिर जाना है, ये भी एक साइकिल है। सीजन्स का भी साइकिल है। वसंत ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु आती है, वर्षा ऋतु आती है, शरद ऋतु आती है, फिर धीरे धीरे फिर वसंत आती है, फिर ऋतुएं रिपीट होती हैं। गोज ऑन। समुद्र में पानी है, सूर्य की गर्मी से वो भाप बनता है, बादल बनते हैं, बादलों में जब पानी भर जाता है तो वो बरसते हैं, फिर से नदियों के माध्यम से सागर में चले जाते हैं, वो सागर में जब पानी भर जाता है फिर से सूर्य की गर्मी से वो भाप बनता है और बादल बनते हैं और वर्षा होती है। साइकिल। अब कोई भी चीज देख लीजिए, जीवन में साइकिल में है। संसार में हर चीज साइकिल में चलती है, तो हमारा ये जीवन भी साइकिल में चलता है। हम क्या थे, क्या बन गए, फिर क्या बनेंगे, ये समय बताता है, ये साइकिल बताता है। संसार क्या था और आज क्या बन गया। ज्यादा दूर ज्यादा लंबा न जाएं, कुछ ही वर्षों पहले की बातें अगर हम सोचते हैं, अपने बुजुर्गों के समय की बातें सोचते हैं कि उस समय कैसे बड़े बड़े कुटुंब हुआ करते थे, सब लोग साथ में रहते थे, मिलजुल करके रहते थे, प्यार से रहते थे, बल्कि नेबर्स भी परिवारों की तरह रहते थे, नेबर्स भी परिवारों की तरह रहते थे, और आज तो परिवार भी परिवारों की तरह नहीं रहते हैं। एक परिवार है वो भी कुटुंब तो कोई शायद ही रहा हो दुनिया में, माइक्रो फैमिलीज हो गई हैं, छोटे छोटे परिवार हो गए हैं, लेकिन परमात्मा समझाते हैं फिर वही समय लौट कर आएगा, फिर सब इकट्ठे होंगे, फिर सब आपस में बड़े प्यार प्रेम से रहेंगे, और यही चीज इस खेल में हमें सुख दे जाती है कि अच्छा फिर से ऐसा ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, अभी ऐसा है फिर से ठीक होगा। समय है ना, समय तो परिवर्तनशील है ना, आज हार हुई है कल तो जीत होनी है ना, कोई बात नहीं। तो मनुष्य के पास एक्सेप्टेंस की ताकत आ जाती है, हिम्मत आ जाती है, और फिर से उसे ठीक करने में वो जुट जाता है कि हमारे ही प्रयत्नों से ये फिर से ठीक होने वाला है। तो ये संसार, ये वर्ल्ड ड्रामा साइकिल, ये खेल जो चलता है, जिसमें एवरी मोमेंट एक चेंज होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, उस ड्रामा में भी तीन एंटिटीज ऐसी हैं जो कभी बदलती नहीं है, जो सदा हैं, जो एटर्नल हैं, जो इमॉर्टल हैं, वो कभी खत्म नहीं होती और कभी पैदा नहीं होती। वो तीन एंटिटीज कौन सी हैं? वो तीन एंटिटीज हैं जिसमें से एक है मैं, आत्मा, स्वयं, हम सब आत्माएं, जो एटर्नल है, इमॉर्टल है, अजर अमर अविनाशी है, जो कभी बनती नहीं, जिसको जन्म नहीं दिया जाता, वो सदा है और ना ही मृत्यु को पाती। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, हम कहते हैं कि फलाने की मृत्यु हो गई, तो वास्तव में किसकी मृत्यु हुई? उस समय आत्मा कहां जाती है? जब तक आत्मा शरीर में थी तब तक बोल रहा था, हंस रहा था, खेल रहा था, सुन रहा था, खा रहा था, पी रहा था, सब कुछ कर रहा था। अचानक से क्या हो गया? आत्मा इस शरीर से निकल गई, शरीर की वर्किंग कैपेसिटी खत्म हो गई। जो मशीनरी है फिजिकल, चलते 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 रुकते 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 जब वो रुक जाती है तो धीरे 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 जो उसकी गर्माहट है ना वो खत्म हो जाती है। इसलिए जनरली जब किसी की डेथ होती है ना बॉडी को टच करके देखा जाता है, वो वेंटिलेटर पर रखते हैं तो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन पर रखते हैं तो तब तक गर्म होता है, पर जैसे ही वो निकाला ठंडा हो गया कि आत्मा निकल गई, जिसके कारण वार्मनेस थी वो निकल गई वो शक्ति, तो समझ लिया जाता है कि मृत्यु हो गई, डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो आत्मा तो निकल गई, आत्मा मरी नहीं, कहां गई? दुनिया में कहा गया है चल बसा, यहां से चला कहीं जाकर के नया जन्म बसा, जीवन मृत्यु साइकिल। शरीर भी नहीं मरता वास्तव में, शरीर पंच तत्वों का बना हुआ है, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश, और ये पांचों तत्व, ये दूसरी एंटिटी, ये तत्व, ये भी इमॉर्टल है, ये भी अटर्नल है, ये सदा है। कभी दुनिया से जल खत्म नहीं होता, कभी धरती खत्म नहीं होती, कभी वायु खत्म नहीं होती, सदा है ये पांचों ही तत्व, सदा है। शरीर इन तत्वों का बना हुआ है, हां रूप परिवर्तन हो जाता है, फॉर्म बदल जाती है, तत्व तो रहते हैं। इसलिए आपने कभी सुना होगा या देखा होगा, कहा जाता है जब अंतिम संस्कार किया जाता है कि पंच महाभूत पंच महाभूतों में समा गए, वो परिवर्तित होता है, खत्म नहीं होता। और तीसरी एंटिटी है वो है स्वयं परमात्मा, स्वयं परमात्मा, वे भी अटर्नल और इमॉर्टल हैं। अगर हम कहें कि ये पुरुष और प्रकृति का खेल है तो परमात्मा को हम परम पुरुष कह सकते हैं, जिसको अपनी देह नहीं है। और इस खेल में जो पार्ट बजाने वाले हैं, इस खेल में जो आते हैं वो पुरुष और प्रकृति दो आते हैं, तीसरा नहीं आता, वो इंटरवीन करता है, वो ये खेल नहीं खेलता, भगवान ये खेल नहीं खेलता। अगर वो भी हमारी तरह खेल खेलने लगे तो समय पर बचाएगा कौन, ताकत देगा कौन, क्योंकि उसकी भी फिर हमारी तरह ताकत क्षीण हो जाएगी ना। इसलिए कहा गया है ये पुरुष और प्रकृति का खेल है, आत्मा को पुरुष कहा गया है, चाहे वो फीमेल तन वाली आत्मा हो या मेल तन वाली, आत्मा पुरुष। और जब उसे प्रकृति का साथ मिलता है अर्थात शरीर का साथ मिलता है तो हम जीवात्मा ही कहलाते हैं। तो ये पुरुष और प्रकृति का खेल है। और जब तक पुरुष का कंट्रोल है, आत्मा का कंट्रोल है प्रकृति पर, तब तक जीवन में सुख है, आनंद है, इंजॉयमेंट है, प्यार है, समझ है, विजडम है। जब हम कहते हैं ना ज्ञान, ज्ञान माना ऐसा नहीं कि कोई सब्जेक्ट का ज्ञान, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं ना दुनिया में, या कि ये आध्यात्मिक ज्ञान, इसके पीछे छिपी हुई विजडम, समझ। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल की शिक्षा नहीं ली, कॉलेज की शिक्षा नहीं ली, या कोई ऐसे किताबें पढ़ी भी नहीं, आध्यात्मिक किताबें, लेकिन उनके अंदर समझ बहुत होती है, जिसको जनरली हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में कॉमन सेंस भी कह देते हैं, वो विजडम उनके अंदर होती है। तो यहां भी हमारा विजडम से तात्पर्य है। तो जब पुरुष कंट्रोलर है अर्थात आत्मा का कंट्रोल है, अर्थात वो सात गुण आत्मा के व्यवहार में है, आत्मा प्रकृति को कंट्रोल करती है, प्रकृति की ये सारी इंद्रियां कर्मेंद्रियां उसके कंट्रोल में है, तो जीवन में सुख है। और जब कंट्रोल प्रकृति के हाथ में चला जाता है तो जीवन में दुख है, केओस है, भोगना है, बीमारी है, डेथ है। जैसे जब ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, बहुत से ड्राइवर्स ऐसे होते हैं जिनको गाड़ी चलाने का शौक होता है, दे एंजॉय ड्राइविंग। कई फैमिलीज में ऐसे लोग होते हैं, चाहे फादर हो या मदर हो या बच्चे हो, दे एंजॉय ड्राइविंग। ड्राइविंग ड्राइवर रखा हुआ है, लेकिन कभी कभी ड्राइवर को बाजू की सीट पर बिठा करके गाड़ी खुद ड्राइव करते हैं कि आज मैं चलाऊंगा गाड़ी, क्योंकि दे एंजॉय ड्राइविंग, मजा आता है, सुख मिलता है, खुशी मिलती है, अंदर में एक गर्व सा फील होता है। तब तक जब तक गाड़ी उसके कंट्रोल में है, गाड़ी का हर पुर्जा उसके कंट्रोल में है, उसके हाथ में गियर भी है, ब्रेक भी है, लाइट्स की भी ऑपरेटिंग है, स्टीयरिंग भी है, क्लच भी है, एक्सीलेटर भी है, सब व्यवस्था ऐसी है गाड़ी चलाने वाले के लिए। उस गाड़ी में उसको सब पता है कि कहां क्या आ रहा है, लेफ्ट से कौन आ रहा है, राइट से कौन आ रहा है, पीछे से कौन आ रहा है, साइड से कौन ओवरटेक करना चाहता है, उसको सब पता है। और इस तरह से वो मंजिल पर पहुंचता है, एक बार नहीं कई बार पहुंचता है, क्योंकि गाड़ी पर उसका कंट्रोल है, गाड़ी को कंट्रोल करके वो ड्राइव करता है, इसलिए इंजॉय करता है। और डेस्टिनेशन पर खुद भी पहुंचता है, अनेकों को पहुंचाता है, और कभी कभी अगर वो बिफोर टाइम पहुंच जाता है तो उसकी भी उसको खुशी होती है। और जो साथ में बैठने वाले हैं, जो साथ में बैठने वाले हैं, अगर उनको भी उसकी उस ड्राइविंग का सुख मिलता है, वो ड्राइवर को पता चलता है, जो समझदार ड्राइवर होता है ना, उसको पता चलता है कि जो बैठने वाला है ना उसको कैसी ड्राइविंग चाहिए। कुछ लोग ड्राइव करते हैं ना तो उनकी ड्राइविंग बड़े धक्के लगाती है, कभी कभी तो कमर ही दर्द हो जाती है, स्पीड ब्रेकर आएगा वो ऐसा निकालेंगे ना वहां से गाड़ी को, जो उछल करके पूरी हो जाएगी, वो गाड़ी तो उछलेगी व्यक्ति भी उछल जाएगा, मुंह से आवाज भी निकल आएगी। कुछ लोग बड़ा स्मूथ ड्राइव करते हैं और इसलिए लोग चॉइस करते हैं, मुझे वो वाला ड्राइवर हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ही ड्राइव्स वेरी स्मूथ और ध्यान रखता है, ये उसका काम है, वो ध्यान रखता है। इसलिए लोगों की शाबाशी, भले कोई उसको यूं पैटिंग न करे बैक पर, लेकिन मन ही मन लोग उसको दुआ जरूर देते हैं कि बड़ा प्यार से ले गया और प्यार से ले आया, बड़ा अच्छा ड्राइवर था। जब अपनी गाड़ी होती है, अपना ड्राइवर होता है, तब तो हमारे कंट्रोल में ही होता है काफी कुछ, हम उस ड्राइवर को कह भी देते हैं जरा थोड़ा सा ऐसी ड्राइविंग करो, जो क्योंकि मुझे थोड़ा कमर दर्द रहता है भाई, तो थोड़ा ऐसी ड्राइविंग करो। लेकिन जब हम पब्लिक व्हीकल में बैठे हैं, जब हम ट्रेन में बैठे हैं, जब हम फ्लाइट में बैठे हैं, तब तो हम दूसरों के ही हाथों में हैं, लेकिन तब भी भगवान को याद करके बैठते हैं कि भगवान अब तो आप ही मेरी नैया के खिवैया हो, आप ही मंजिल पर पहुंचा देना। इसलिए ये सिस्टम बनी हुई है हमारे कल्चर में, जब कोई जाता है ना तो क्या कहते हैं, ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी, और आजकल ऐड कर दिया है हैप्पी एंड सेफ जर्नी, विश करते हैं, लास्ट मोमेंट तक जब तक वो व्यक्ति आंखों से ओझल नहीं होता, उसकी गाड़ी ओझल नहीं होती, बालकनी में खड़ी मां उसको देखती रहती है, जल्दी आना ये कहकर भेजती है। इसलिए कई लैंग्वेजेस में ना लोग ये नहीं कहते मैं जा रहा हूं, बहुत सा हिंदी में तो यही कहते मैं जा रहा हूं, लेकिन कुछ भाषाओं में जैसे गुजराती भाषा में कहते हैं आउजो, आना, या मराठी में कहते हैं मी ये तो, मैं आ रहा हूं। भाई आप तो जा रहे हो, हिंदी भाषा वाला कहेगा आप तो जा रहे हो, वो कहते नहीं हम नहीं कहते ऐसा, मैं आ रहा हूं। तो जब ड्राइवर अच्छा है गाड़ी का तो गाड़ी अच्छी चलती है, मंजिल पर पहुंचाती है। अर्थात जब ड्राइवर का उस गाड़ी अर्थात मैटर प्रकृति पर कंट्रोल है तब गाड़ी मंजिल पर पहुंचाती है। लेकिन अगर गाड़ी में कुछ हो जाए, उस प्रकृति में कुछ हो जाए, उस मैटर में कुछ हो जाए, तो ड्राइवर क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजी वर्क करना बंद कर दे, ब्रेक फेल हो जाए, तो अब ड्राइवर के हाथ में गाड़ी नहीं है, अब गाड़ी के हाथ में ड्राइवर है। तो जब पुरुष के हाथ में प्रकृति है तब तक सुख है, लेकिन जब प्रकृति के हाथ में पुरुष चला गया अर्थात आत्मा पर इंद्रियों का कंट्रोल हो गया, मन का कंट्रोल हो गया, जब आत्मा पर मुख कान आंख हाथ पांव इत्यादि का कंट्रोल होने लगा, अब आत्मा कहां पहुंचेगी, क्या होगा, कुछ पता नहीं। फिर क्या होता है। यहां जो हम इस चित्र में देख रहे हैं, ये पूरा वर्ल्ड ड्रामा साइकिल जो राउंड यहां दिखाया हुआ है, आप सब देख पा रहे होंगे, शायद साइड पे बैठने वाले देख पा रहे हैं या नहीं, इसको एक स्वस्तिक डिवाइड कर रही है। आप स्वस्तिक देख रहे हैं, स्वस्तिक बनी हुई है। जनरली जब कोई शुभ कार्य होता है ना, कोई मंगल कार्य होता है, तब इस स्वस्तिक को वहां पर ड्रॉ किया जाता है, बनाया जाता है, और किसी ऐसे व्यक्ति से करवाते हैं जो व्यक्ति के संस्कार आध्यात्मिक हो, अच्छा हो। मंदिर में ले जाएंगे, किसी आश्रम में ले जाएंगे, अपने गुरु के पास ले जाएंगे, नहीं तो वो पेरेंट्स जो आपको आशीर्वाद और दुआएं देते हैं उनके पास ले जाएंगे कि आप इसकी पूजा करो, तब स्वस्तिक बनाया जाता है। तो जब स्वस्तिक को चार भागों में बांटा है, जब राइट हैंड है, वी आर राइटियस, तो ये आधा हिस्सा जो है ये सुख वाला हिस्सा है। जब पुरुष के कंट्रोल में प्रकृति है, इंद्रियों पर आत्मा का कंट्रोल है, इंद्रियां आत्मा के हिसाब से चलती हैं, ऐसा नहीं है मैं क्या करूं मेरे मुंह से निकल गया, मुझे बोलना तो नहीं था लेकिन निकल गया, तो ये क्या हुआ कि मेरी मुख रूपी इंद्री का मेरे ऊपर कंट्रोल हो गया है, अब मेरा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहा। मैं चाहूं तो बोलूं, मैं चाहूं तो ना बोलूं, बोलता कौन है इस मुख द्वारा, बोलता कौन है, मैं बोलती हूं। इट इज नॉट द माउथ हु स्पीक्स, इट इज आई हु इज स्पीकिंग थ्रू माय माउथ, ये मैं बोल रही हूं। मैं चाहूं वो सुनूं, मैं ना चाहूं वो ना सुनूं, पर फिर भी अक्सर हम ऐसी बातें कान लगा करके सुन लेते हैं जो सुनने जैसी नहीं थी। ये गलत करते हैं, ये हमारा कल्चर नहीं है। लेकिन जब हम इस दुनिया में थे, जब इन दो युगों में थे, जब स्वस्तिक का राइट हैंड था अर्थात जब हम राइटियस थे, जब हमारे जीवन में धारणाएं थी, धर्म था, तब सुख था, प्रेम था, आनंद था, खुशी थी। इसलिए स्वस्तिक का ये राइट हैंड सतयुग को दर्शा रहा है, और ये राइटियसनेस थोड़ा सा डाउनफॉल आया, राइटियसनेस डाउनवर्ड, ये त्रेता को दर्शा रहा है। दिस इज गोल्डन एज, दिस इज सिल्वर एज। तो यहां प्रकृति हमारे कंट्रोल में है, लेकिन यहां लेफ्टिस्ट होने के बाद प्रकृति का कंट्रोल हमारे ऊपर हो गया, प्रकृति का हमारे ऊपर, कर्मेंद्रियों का हमारे ऊपर कंट्रोल हो गया, और कंट्रोल होते 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 अनराइटियसनेस अपवर्ड। ये द्वापर युग और ये कलयुग, रजो प्रधान तमो प्रधान, और तमो प्रधानता बढ़ते 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 इतनी बढ़ गई, ही कैन सी द वर्ल्ड ऑफ टुडे, आज क्या हो रहा है दुनिया में, आज क्या चल रहा है, हर तरफ से क्या मिल रहा है, वो नहीं मिल पा रहा जो हम चाह रहे हैं, जो मिलना चाहिए था, या जो हमारे पास यहां था वो कहीं लुप्त हो गया है, प्राय लोप हो गया है, खत्म सा हो गया है, और फिर कैसे आएगा ये हमें पता नहीं है। हमें तो नहीं पता है, लेकिन उस परम पुरुष को पता है, क्योंकि पुरुष तो खेल खेल रहा है, और इस खेल में चलते 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 कुछ वर्ष बीतते 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 आखिर ऐसी स्थिति आ गई, जैसे दिन था, दिन चलते 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 रात आ गई, अंधकार हो गया, अब क्या करूं। चलो आजकल तो लाइट्स हैं, पुराने जमाने में तो लाइट भी नहीं होती थी ना? एक समय ऐसा भी था जब फायर भी नहीं थी, लोग ऐसा कहते हैं, तो दीपक भी कहां जला सकते थे। लेकिन जैसे ही सूर्य उदय होता है फिर से दिन आ जाता है, मनुष्य को पता लग गया कि अब सूर्य उदय होगा, तो वो सूर्य उदय की राह देखता है, और जैसे ही दिन आता है खुशी होती है, फिर से सब कुछ ठीक होने लगता है, फिर से दिन आया, खुशी आई, सब कुछ अच्छा मिलने लगा, आत्मा को सुख मिलने लगा, क्योंकि ना सन के बिना तो लाइफ ही नहीं है ना। तो ऐसे ही जब हम मनुष्य आत्माएं अति तमो प्रधान बन जाती हैं, तमो प्रधानता का अंधकार, देह अभिमान, देह भान, विकारों का अंधकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ईर्ष्या द्वेष नफरत वैर भावना, लक बुलिंग, किसी को गिराना, दुख देने की भावना, जब इस प्रकार की भाव भावनाएं हमारी बन जाती हैं, तो हम देखते हैं जब ऐसा समय आ जाता है तब यहां पर वो परम पुरुष इंटरवीन करता है, उसका रोल यहां आता है, उनकी इंटरवेंशन होती है, और उनकी इंटरवेंशन क्या करती है, वो परम पुरुष जिसे हम ज्ञान सूर्य भी कहते हैं, वो ज्ञान सूर्य परमात्मा स्वयं इस धरा पर आकर के वो ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। तो अज्ञानता के कारण जो अंधकार था, अज्ञानता के कारण जो हम विकारों में फंस गए थे, जो हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंस गए थे, जो ईर्ष्या द्वेष करके अपना ही नुकसान कर रहे थे, क्योंकि ये विकार क्या है, दीज आर द टॉक्सिन्स, पॉइजन है ये, मुझे आत्मा के लिए पॉइजन है, न केवल मेरे लिए पॉइजन है, सबके लिए पॉइजन है। अगर मैं किसी से जेलसी करती हूं तो जैसे कि मैं पॉइजन फैला रही हूं, लेकिन माफ कीजिए, जिस बर्तन में जहर होता है सबसे ज्यादा नुकसान उस बर्तन को ही होता है। अगर हम किसी के प्रति जेलस करते हैं, हो सकता है कुछ शक्ति शिक्षा प्राप्त करके वो व्यक्ति आपकी जेलसी को लेट गो करके चलता है, आपको माफ करके चलता है, आपकी जेलसी को, आपके जेलसी भरे कर्मों को भूल करके चलता है, He has maintained the feelings of forgiveness and forget. करने की उसकी feelings हैं. लेकिन जिस बर्तन में, जिस प्याले में जहर है, उसको तो नुकसान हो ही जाएगा. जिस मन में जहर है, उसको कितना नुकसान होगा? हम शायद ये समझ नहीं पाते हैं. और उस जहर से अपना नुकसान करते रहते हैं और वैसे ही चलते रहते हैं. इसलिए जब परमात्मा इंटरवीन करते हैं, परमात्मा सबसे पहले यही शिक्षा देते हैं, देह सहित देह भान और देह अभिमान दोनों को छोड़, अपने को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा को याद करो. और कहते हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं तुम्हारे सर्व पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा. सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज. तो ये वो समय आता है, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट समय है. अगर आप देख पा रहे हो तो ये दो युगों के बीच में एक छोटा सा समय दिखाया हुआ है, एक अलग युग दिखाया है. और इस युग को दिखाने के लिए यहाँ इस चित्र को, इस साइकिल को एक क्लॉक के रूप में भी दिखाया गया है. घड़ी की दो सुइयां हैं जो समय बता रही हैं. कितना बजा है घड़ी में? आप में से कोई बताएं, इस घड़ी में कितना बजा है? इस वाली मेरी रिस्ट वॉच में नहीं, इस वाली घड़ी में कितना बजा है? हाँ, क्या चीज? 12 बजने वाले हैं, माना अगला दिन आने वाला है. जब रात के 12 बजते हैं तो क्या होता है? घड़ी में डेट बदल जाती है, पीएम से एएम शुरू हो जाता है ना? और यहां एएम माना दिस एज, सतयुग त्रेता एएम, द्वापर कलयुग पीएम, माना ये दुनिया आने वाली है, ये समय आने वाला है. ये खुशी की बात है कि जो समय अभी चल रहा है तमोप्रधानता का, वो समय समाप्त होने वाला है. और अभी कौन सा समय आने वाला है? वो सतयुगी दुनिया का समय, जब पुरुष का प्रकृति पर कंट्रोल था, जब इस जीवन को चलाना सुखदाई था, जब सब एक दो को सुख देते थे, कोई किसी को दुख नहीं देता था. दुख शब्द डिक्शनरी में ही नहीं था, दुख शब्द हमारे शब्दकोश में ही नहीं था. जितने भी वर्ड्स हैं उनकी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस होती है ना, तो ऐसी कोई कॉम्बिनेशन थी नहीं जिसे दुख कहा जाए. ऐसी दुनिया थी. तब मंदिर अलग नहीं बनाए जाते थे. जो मनुष्य थे उनके इतने अच्छे श्रेष्ठ गुण थे, उनके घर, क्योंकि जिस स्थान पर वो रहते थे उनका व्यवहार ऐसा था कि वो जैसे कि देवताओं जैसे थे. वो मनुष्य मनुष्य नहीं, देवताएं ही कहलाते थे. ये फैक्ट्स हैं जो स्वयं परमात्मा ने रिवील किए हैं. दीज आर द ट्रुथ्स ऑफ लाइफ. और अगर अपनी लाइफ में आप पीछे 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 जाते जाएं, जितने वर्ष तक, जितने पूर्वजों तक आप जा सकते हैं, आप पाएंगे कि पहले जमाने में फिर भी सुख था. और अब क्या हो गया? आप इतिहास पढ़ लीजिए तो भी आपको मिल जाएंगी ये बातें. हम स्कूल के बच्चों के स्कूल की किताबों में पढ़ते थे, जब स्कूल में बचपन में, कि जब एक ऐसा समय था जब इस दुनिया को वैकुंठ कहा जाता था, घी दूध की नदियां बहा करती थी, माना कोई कमी नहीं थी, कोई किसी को दुख नहीं देता था, घर खुले रहते थे, ताले नहीं लगाए जाते थे, ऐसा भी समय था. तो वो कब आता है? जब परमात्मा इंटरवीन करते हैं. और परमात्मा इंटरवीन करके हम आत्माओं को जब ये ज्ञान देते हैं, और इस ज्ञान को सुन करके, हम केवल सुनते नहीं हैं, केवल समझते नहीं हैं, लेकिन इसे फॉलो करते हैं. मुझे ये समझ मिल गई कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं. अब सामने वाला व्यक्ति जोर जोर से गुस्सा कर रहा है, जोर जोर से बोल रहा है, अशांति फैला रहा है, हम भी जोर से बोलने लगे। तो आपका ये समझने का फायदा क्या हुआ कि आप एक शांत स्वरूप आत्मा हो? पर आप एक्सक्यूज देंगे, भाई आप उसको तो देखिए ना, वो कितनी जोर से बोल रहा है, बोलने दो उसको, बोलने दो। उस बेचारे को पता ही नहीं है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, ये मेरा गुण है। किसी के पास बहुत सारा खजाना हो और भिखारी की तरह हाथ फैलाता रहे, पता ही नहीं है मेरे पास खजाना पड़ा है, मेरे पास शांति का खजाना पड़ा है, मुझे पता ही नहीं है तो मैं कैसे शांत रहूं? पर मुझे तो पता है। और आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख लेना कभी भी, कि जब आप चुप रहते हैं, आप अंदर से शांत रहते हैं, आप अपने उस आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, बल्कि उस आत्मा को जो गुस्सा कर रही है उसे भी वो शांति के वाइब्रेशन सेंड करते हैं, थोड़ी देर के बाद वो चुप हो जाती है, शांत हो जाती है। बल्कि कुछ घंटों के बाद या एक दिन के बाद, दो दिन के बाद वो रियलाइज करती है, इट वॉज माई मिस्टेक, मेरी भूल थी जो मैं इतनी जोर जोर से बोल रहा था, गलती भी वास्तव में मेरी थी। और वो रियलाइज कर लेता है आपकी शांति ने काम किया। इसलिए मैं केवल शांत स्वरूप आत्मा नहीं हूं, लेकिन आई एम पीस। पीस एंड आई आर सिनोनिम्स, वी आर सेम, हम एक ही हैं। आई एंड लव आर सिनोनिम्स, हम एक ही हैं। कोई कहे कि किसके पास जाए जो शांति मिले, लोग हमारा नाम दें। किसके पास जाए जो प्यार से मिले, लोग हमारा नाम दें। भगवान को अपना कोई कार्य कराना हो और उसे चूज करना हो भरी सभा में से, कि कौन आत्मा है जो सचमुच शांति की पर्यायवाची है, तो उसका इशारा हमारी तरफ हो, वो कहे कि वो व्यक्ति बैठा है, वो व्यक्ति। जब भगवान चूज करता है ना, तो उसकी चॉइस बेस्ट होती है। एक वो लिस्ट होती है जो भगवान को याद करने वाले हैं, एक वो भी लिस्ट होती है भगवान जिनको याद करते हैं। टीचर को तो सब याद करते हैं, लेकिन टीचर किसी स्टूडेंट को याद करे, उस स्टूडेंट की वाहवाही होती है। तो परमात्मा हमारे टीचर भी तो है ना, और वो हमें याद करे, वो हमें चूज करे अपने कार्यों के लिए, तो कितनी बड़ी बात है। तो इस समय परमात्मा आकर के हमें जैसे वो हैं वैसा बना रहे हैं, अपने लायक बना रहे हैं, अपने सम बना रहे हैं, भगवान सम बना रहे हैं। इसलिए देवताओं की मूर्तियों को भगवान के स्थान पर रखा जाता है। हैं वो देवताओं की मूर्तियां, परमात्मा तो एक ही है, देवी देवताएं बहुत सारे हैं, पर उनकी मूर्तियों को भगवान के स्थान पर रखा जाता है। भले हैं वो मूर्तियां, लेकिन फिर भी भगवान के स्थान पर, उनको देखकर भगवान का नाम लिया जाता है, उनको देखकर भगवान को याद किया जाता है, उनको देखकर भगवान को जैसे भोग लगाया जाता है वैसे भोग लगाया जाता है, कि उन्होंने किसी काल में ये करके दिखाया था। इसलिए तो वो कौन सा काल था? वो ये समय, ये प्रेजेंट टाइम, ये जो यहां दिखाया हुआ है, ये टाइम जिसको हम कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग, सत्युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। लेकिन कलयुग का अंत और सतयुग की बिगिनिंग आदि वो है संगम युग, पुरुषोत्तम। वाहे पुरुषोत्तम, जब पुरुष अर्थात आत्मा उत्तम माना श्रेष्ठतम बनती है, और ये संगम माना दो युगों का मिलन, इसलिए संगम का भी महत्व है। इलाहाबाद में जब तीन नदियों का संगम होता है तो उस स्नान का महत्व है, क्योंकि इस समय जब हम ज्ञान स्नान करते हैं और परमात्मा हमें वह ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान से आत्मा पवित्र बनती है, जिसका महत्व उन्होंने इलाहाबाद में वो संगम का दिखाया है, कि यहां स्नान करने से हम पवित्र बन जाते हैं। और जब हम पवित्र बनते हैं अर्थात हम विकारों को त्याग देते हैं। वास्तव में विकार स्वतः ही छूट जाते हैं। जब हम शांति को अपनाते हैं अशांति स्वतः ही छूट जाती है, प्यार को अपनाते हैं क्रोध स्वतः छूट जाता है। जितने भी गुणों को आप अपना लीजिए, ये मूल सात गुणों से सारे गुण आते हैं, चाहे वो फैमिली वैल्यूज हो, चाहे वो प्रोफेशनल वैल्यूज हो, चाहे वो मॉरल वैल्यूज हो, चाहे कोई भी वैल्यूज हो, सारे गुण। तो इन सात कोर वैल्यूज जो आत्मा की हैं, जो मुख्य हैं, जो स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं, अगर हम उनका अभ्यास करें पर्टिकुलरली, इसलिए कहा है लर्न व्हाट आई एम एक्चुअली, मैं जो हूं आप वो लर्न करिए, उस पर ध्यान दीजिए और अपना सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि आज ऑफिस में ये घटना घटी। मैं जब ऑफिस में अपनी टेबल पर बैठा तो पियोन जिसकी जवाबदारी है टेबल को क्लीन करने की, उसने टेबल क्लीन नहीं की थी। मैं बैठा, बैठते ही उस अनक्लीन टेबल को देखकर मुझे गुस्सा आया, या मैंने क्या किया, या प्यार से उसको बुला लिया कि भैया जरा टेबल साफ कर देंगे। और अगर वो बाई चांस किसी कारण से अवेलेबल नहीं है, आज लेट हो गया है, कोई बात नहीं, मैंने और कोई मीडियम अपना लिया टेबल को क्लीन करने का, शायद कभी कुछ खुद भी कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें आपका महत्व बढ़ेगा घटेगा नहीं, आपका स्टेटस ऊंचा ही होगा छोटा नहीं होगा। लेकिन बड़ी बात यह थी कि मुझे क्रोध नहीं आया, और अगर क्रोध आ गया आई नीड टू चेंज माई सेल्फ, आई नीड टू एम्पावर माई सेल्फ, मुझे अपने आप को शक्ति देने की जरूरत है। इसलिए अगर मुझे शांति में रहने का अभ्यास करना है, मुझे टॉलरेंस को अपनाना होगा, मुझे पेशेंस को अपनाना होगा, मुझे मधुरता को अपनाना होगा। और जब हम इन गुणों को अपनाने लगेंगे, इनकी प्रैक्टिस डेलिबरेट प्रैक्टिस करने लगेंगे और फिर अपना सेल्फ एनालिसिस करेंगे, इसलिए कहा है रीथिंक योर थिंकिंग, बार बार सोचो अपने लिए कि कहां मैं अभी गुंजाइश है मेरे में चेंज करने की। और वहां हम वो छोटी छोटी बातों से अगर स्वयं को बदलते हैं तो हम पाएंगे धीरे 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 हमारे अंदर वो बदलाव आ गया है। जैसे यहाँ ज्ञान सरोवर में हमारे विंग्स के कार्यक्रम चल रहे हैं, ऐसे ही शांतिवन जो नीचे हमारा बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, कई एकड़ में वो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, शायद आपने देखा हो या जाते जाते देखेंगे भी, तो उस कॉम्प्लेक्स में राजयोग शिविर चल रहे हैं और एक नहीं एट ए टाइम कई प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो कल ही एक लिटरल डॉक्टर PhD मैथमेटिक्स में PhD किया हुआ एक टीचर, कल उनसे मुलाकात हुई तो वो सुना रहे थे, उनकी कुछ अपनी इश्यूज थे, फैमिली इश्यूज थे जिसके बारे में वो कुछ गाइडेंस चाहते थे, लेकिन उनका ये कहना था कि दीदी मेरी छुट्टियां हैं अभी क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ और स्कूल कॉलेज में तो छुट्टियां मिलती हैं, तो क्या मैं एक हफ्ता और यहाँ रह सकता हूँ और सीख सकता हूँ। हम तो देखते हैं लोग आते हैं और जाने की जल्दी में होते हैं, और ये व्यक्ति और रहना चाहता है, कोई रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति तो नहीं है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है, फैमिली है, बच्चे हैं, वाइफ है, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बट वाई, बिकॉज ही सेड कि दीदी मैंने ये 3 दिनों में अपने अंदर बहुत बदलाव देखा है, आई कैन एक्सपीरियंस दैट। और मैं ऐसा समझता हूं कि अगर मैं यहां और इस वातावरण में रहा तो मेरे अंदर और बदलाव आ जाएगा, एक अच्छा बदलाव, और अगर ये बदलाव मेरे अंदर आ गया तो जरूर मेरे परिवार के अंदर भी ये बदलाव आएगा, और जरूर सब चाहते हैं इस बदलाव को लाना, हमारा घर खुशनुमा हो जाएगा, एंड व्हाट एल्स वी नीड। इसलिए समय को पहचाने, अब समय बहुत नहीं है, संगम का समय आगे बढ़ता जा रहा है, हम परिस्थितियां भी देख रहे हैं, कैसी जीवन में परिस्थितियां चल रही हैं, कितनी इनसिक्योरिटी है, किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है, हम एक क्षण यहां बैठे हैं, नेक्स्ट मोमेंट आई डू नॉट नो व्हाट विल हैपन, लेकिन फिर भी अपने में फेथ रखते हुए, उसमें फेथ रखते हुए, अपने को सिक्योर रखते हुए, अपने को शक्तिशाली बनाते हुए, अपने अंदर इन गुणों की धारणा करते हुए जब हम चलते हैं तो हम देखते हैं जीवन बड़ा सहजता से निकल जाता है और तब ये खेल खेलना बड़ा आसान हो जाता है, बड़ा आसान। फिर इस खेल से हम भागने की कोशिश नहीं करते, लेट चैलेंजेस कम, कोई बात नहीं, फिर हम डरते नहीं हैं चैलेंजेस से, चैलेंजेस के बारे में सोचते नहीं हैं। मैं कल ही लास्ट बात कह रही हूं, कल ही जिस व्यक्ति की मैं बात कह रही हूं वो मुझे ये कह रहे थे, दीदी आज की तारीख में मेरी ये स्थिति हो गई है मन की कि मैं मेरे स्टूडेंट्स के नाम भूल जाता हूं, मैं जब पढ़ा रहा होता हूं मैं फॉर्मूला स्किप कर लेता हूं, और अगर ऐसा होता रहा वेयर आई विल बी, क्योंकि मन पर उन इश्यूज का बहुत गहरा असर हो गया है। इसलिए ये एकमात्र उपाय है आध्यात्मिक ज्ञान। हम ये नहीं कहते कि आप कोई सफेद वस्त्र पहन के या न सब कुछ छोड़ करके, अपना घर ग्रस्त छोड़ करके यहां आकर के बैठ जाओ या सेंटर्स पर बैठ जाओ, नो, यू डोंट हैव टू लीव एनीथिंग, यू हैव टू एक्सेप्ट सो मेनी थिंग्स, और जितना आप अच्छी बातों को एक्सेप्ट करते जाएंगे, जो नेगेटिविटी है जीवन से, टॉक्सिन जो है वो आप ही निकलते जाएंगे और हमारा जीवन हर प्रकार से खुशनुमा बनता जाएगा। ऐसी ही आप सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए कि आप सबका भी ऐसा जीवन बने और आप इस वर्ल्ड ड्रामा साइकिल में अच्छे से अच्छा रोल प्ले करें, इन सात गुणों को आप अपना रोल प्ले करें और आप भी अवार्ड विनर बने, ऐसी शुभ भावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।